ये BBC है। तारीख 17 जून दिन बुधवार। नमस्कार भारत के साथ मैं संदीप सोनी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए अमेरिका आगे आया। 40 नई परमाणु मिसाइलें बनाने की रूस की योजना पर नेटो और अमेरिका ने जताई चिंता।
Nobody wants to, I think, go back to a kind of Cold War status. It could well be posturing with this.
ललित मोदी विवाद में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सवालों के घेरे में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में नेतृत्व के मुद्दे पर उभरे मतभेद।
आपस में इतना मतभेद है BJP के राज्य नेताओं में कि किसी एक को पेश करने पर अन्य लोग आसाजोक कर सकते हैं।
खेल की खबरें और समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार प्रगति सक्सेना से। भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी बयानबाजी से लगातार बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए अब अमेरिका ने मध्यस्थता शुरू कर दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी पाकिस्तान और भारत के उच्च स्तरीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान दोनों की अहम भूमिका को मानते हुए उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर दोनों पक्षों की तरफ से वक्तव्यों में संतुलन न रखा गया तो मामला हद से बाहर भी जा सकता है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख ने ग्रीस की सरकार पर आरोप लगाया है कि वे कर्ज संबंधी समझौते की बातचीत के मुद्दे पर आम जनता को धोखे में रख रही है। जां क्लॉड जुंकर ने ग्रीक सरकार के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि आयोग ने ग्रीस में बिजली और दवाइयों पर कर लगाने की बात की है। इससे पहले ग्रीक प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं पर आरोप लगाया था कि वे ग्रीस की सरकार को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने भी ग्रीस से अपील की है कि वे कर्ज को लेकर एक समझौते पर पहुंचने की गंभीर कोशिश करें, वरना ग्रीस के लोगों को और भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अमरीकी अरबपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे अमरीका में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन दाखिल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कभी औपचारिक तौर पर चुनाव नहीं लड़े हैं, हालांकि अक्सर उन्होंने इसकी इच्छा जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी संपत्ति से उन्हें एक प्रभावशाली राष्ट्रपति बनने में मदद मिलेगी। न्यूयॉर्क की अपनी भव्य इमारत से घोषणा करते हुए उन्होंने अमरीका को महान बनाने का वायदा भी किया।
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
मैं नौकरियों के अवसर बढ़ाने वाला सबसे महान राष्ट्रपति होऊंगा। मैं ये तो आपको बता ही सकता हूँ। मैं जापान, चीन, मैक्सिको और बहुत सी जगहों से काम के अवसर वापस लाऊंगा। मैं अपनी नौकरियां वापस लाऊंगा, अपना पैसा वापस लाऊंगा। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी 21st Century Fox ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी के प्रमुख रूपर्ट मर्डॉक इस महीने के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे। 84 वर्ष के मर्डॉक अपने पद की जिम्मेदारी अपने बेटे जेम्स मर्डॉक को सौंप देंगे। अब रूपर्ट मर्डॉक के दोनों बेटे जेम्स और लॉकलन मिलकर इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। ब्राज़ील के सरकारी अभियोक्ताओं का कहना है कि सरकार को तकरीबन 2000 परिवारों को अमेज़न जंगल से बेदखल होने से तत्काल रोकना चाहिए। ये परिवार अमेज़न के उस इलाके में रह रहे हैं जहां एक विशाल बांध के बनने से बाढ़ आ जाएगी। अभियोक्ताओं का कहना है कि जो कंपनियां बेलोमोंटे नाम के इस बांध को बना रही हैं, उन्होंने इन परिवारों को फिर से बसाने और उन्हें जीविका के विकल्प देने संबंधी समझौतों की अनेक शर्तों को तोड़ा है। बांध बनने के कारण जो विस्थापित हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग किसान और मछुआरे हैं। BBC समाचार।
ये BBC है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ने रूस की आलोचना की है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 40 नई परमाणु मिसाइलें बनाने की बात कही है। आएंगे इस खबर पर, लेकिन पहले बात भारत और पाकिस्तान की। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से बयानबाजी में काफी तीखापन आया है और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तरफ भी इशारे किए गए हैं। कुल मिलाकर तनाव जो पहले था और बढ़ा है, और इसी तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने अपनी कोशिशें तेज की हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने अब से थोड़ी देर पहले बात की वॉशिंगटन में मौजूद BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से।
देखें संदीप, अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की है और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं विदेश विभाग के ही एक प्रवक्ता ने बीबीसी हिंदी को बताया कि वो भारत के साथ भी उच्च स्तर पर संपर्क में है जिससे तनाव को कम किया जा सके। गौरतलब है कि कैरी ने नवाज शरीफ को उसी दिन फोन किया है जिस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शरीफ को फोन करके रमजान के महीने की शुरुआत की मुबारकबाद दी है। कैरी ने वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही की पूरे क्षेत्र की बेहतरी में अहम भूमिका है और उन्होंने कहा कि ये निहायत जरूरी है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है जिससे कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश में है उसकी वजह से कोई गलत फैसला न हो जाए। कैरी का कहना था कि ये हमारे लिए काफी चिंता की बात है और इसकी वजह स्पष्ट है। जाहिर है उनका इशारा परमाणु हथियारों की तरफ था और कैरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल सीधी और दो टूक बात की और वो इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते थे और कुछ ही देर पहले उनकी भारत के प्रधानमंत्री से भी बात हुई थी, यानी नवाज शरीफ की भारत के प्रधानमंत्री से जो बात हुई थी उसका जिक्र कर रहे थे जॉन कैरी। और जैसा कि आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं और अमेरिका की कोशिश रही है कि तनाव को काबू में रखा जाए जिससे मामला हद से बाहर न निकल जाए। जॉन कैरी ने यह भी कहा कि कोशिश इस बात की हो रही है कि सभी पक्ष साथ मिलकर आने वाले दिनों और हफ्तों में तनाव कम करने की कोशिश करें।
ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय जो बता रहे थे मामला हद से बाहर ना निकल जाए इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को कम करने की कोशिशें तेज की हैं। अब बात अमेरिका और रूस की। अमेरिका और नेटो दोनों चिंतित हैं क्योंकि चिंतित इसलिए क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 40 नई परमाणु मिसाइलें बनाने की बात कही है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ प्रगति सक्सेना।
नेटो ने रूस पर आरोप लगाया है कि 40 नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा खतरनाक और अस्थिरता फैलाने वाली है। इसके पहले पूर्वी यूरोप के देशों में अमरीका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की बात की थी जिस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा की कि जो भी देश रूस के अधिकार क्षेत्र के लिए खतरा बनेगा रूस उन देशों को अपने हथियारों के निशाने पर रखेगा। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि उनके सुरक्षा बल रूस की किसी भी धमकी से निपटने के लिए तैयार हैं।
रूस ये जो धमकी दे रहा है वह अनुचित है, खतरनाक और अस्थिरता फैलाने वाली है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। यह भी एक वजह है कि हम अब अपनी फौजों को तैयार और मुस्तैद कर रहे हैं।
नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग के शब्द। उधर अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी रूसी परमाणु जखीरे में इजाफा करने की राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा पर चिंता जताई है। जॉन कैरी का मानना है कि परमाणु हथियारों को बढ़ाने का ये फैसला रूस और अमेरिका के बीच वर्ष 2010 में हुए उस समझौते के खिलाफ है जिसके तहत दोनों देश परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जॉन कैरी ने कहा,
Nobody wants to, I think, go back to a kind of Cold War status. It could well be...
मेरे ख्याल से कोई भी शीत युद्ध वाली स्थिति में नहीं जाना चाहता। हो सकता है कि नेटो की सैन्य गतिविधियों पर फिक्रमंद होकर वे किसी समझौते के लिए बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन एक ताकतवर देश का नेता अगर ऐसी घोषणा करता है तो कोई भी इस बात से चिंतित हो जाएगा कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के शब्द। बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि हो सकता है ये रूस की सिर्फ एक धमकी भर हो लेकिन हथियारों में बढ़ोतरी की इस घोषणा से संकेत मिलता है कि शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में जारी तनाव और हिंसा का निकट भविष्य में कोई हल नजर नहीं आ रहा।
रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना। पाकिस्तान की सरकार ने देश में काम कर रहे सभी गैर सरकारी संगठनों को आदेश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर दोबारा पंजीकरण कराएं। सरकार का ये आदेश सेव द चिल्ड्रन नामक एनजीओ पर कार्रवाई के बाद आया है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता आसिफ फारूकी से।
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक मीटिंग की जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर थे और जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर थे और उसमें ये जो चिल्ड्रन तंजीम को बंद करने के बारे में उस पर बहस हुई और उसमें फिर नतीजा ये निकल रहा है, फैसला ये किया है कि जो पाकिस्तान में जितनी भी फॉरेन एनजीओ काम करती हैं उनको 6 महीने के लिए काम करने की इजाजत दी जाएगी, वो यहाँ पे काम कर सकती हैं, लेकिन इन 6 महीनों के दौरान इन तमाम सारी की सारी एनजीओ हैं इनको रजिस्टर दोबारा करवाना होगा गवर्नमेंट के साथ, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो एक नए रूल्स ऑफ बिजनेस सेट करेगी ताकि इनका जो फॉरन का एनजीओ है इन पर नजर रखी जा सके, इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो इस फैसले के बाद अब ये साबित हो गया है कि जो सेव द चिल्ड्रन है उसको भी हुकूमत ने इस ऑर्डर के तहत जो है वो काम करने की इजाजत दे दी।
जी, काम करने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन ये बताइए कि सरकार ने इन गैर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ ये कदम उठाया क्यों है?
देखिए, हो ये रहा था कि बहुत सी फॉरेन एनजीओ जो पाकिस्तान में काम कर रही थी उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो स्पाइंग कर रही थी गैर मुल्कों के लिए। मिसाल के तौर पे ये जो सेव द चिल्ड्रन है, ये आपको मालूम है कि उसामा बिन लादन जब उनको पकड़ा गया था, जब उनकी हलाकत हुई थी, तो डॉक्टर शकील अफरीदी जो है वो सेव द चिल्ड्रन तंजीम के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने स्पाइंग की थी और उन्होंने उसामा बिन लादन के घर पे जाने एक फेक वैक्सीनेशन कैंपेन यूज की थी। इसी तरह और भी बहुत सारी एनजीओज हैं जिनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि वो स्पाइंग का काम करती हैं, वो क्वेटा में जाके उनके बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोग पिशावर में उन एरियाज में गए हैं जहां पे दे वर नॉट सपोज टू गो, जहां पे उनके जाने की इजाजत नहीं थी। तो जब वो गैर कानूनी तौर पे मुख्तलिफ जगहों से पकड़े गए हैं तो उनके खिलाफ फिर हुकूमत ने यह कार्रवाई करने का फैसला।
क्या पाकिस्तान में जिस तरह के कदम उठाए गए हैं और भारत में जिस तरह से गैर सरकारी संगठनों पर लगाम लगाई गई है, क्या उनके बीच में किसी तरह का संबंध देखते हैं आप?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में कोई संबंध है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जिस वजह से इन गैर सरकारी तंजीमों पर बात की जा रही है वो सिर्फ उनकी स्पाइन के रेफरेंस से है, लेकिन इंडिया में जो काम हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का है। यहाँ पे पाकिस्तान में चूंकि इस तरह की पहले इनके पास सबूत है और उनके पास ऐसी एविडेंस आई है कि ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उसी की बेसिस पे आज की मीटिंग में नए रूल्स ऑफ गेम्स बनाए गए हैं, नए लॉज प्रपोज हुए हैं और अगले 3 महीने में एक कमेटी बनी है जो अपने नए लॉज और नए रूल्स लेकर आएगी ताकि इन कमेटीज को, इन जो गैर सरकारी तंजीमें हैं इनको मॉनिटर किया जा सके।
इस्लामाबाद में आसिफ फारूकी से बात कर रही थी सुशीला सिंह। ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। कहते हैं जिन बोतल से एक बार बाहर निकल आए तो उसे बोतल में दोबारा बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। ललित मोदी और सुषमा स्वराज से जुड़े विवाद में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इस विवाद में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी आ रहा है जिन्होंने ललित मोदी की मदद की थी। भारतीय जनता पार्टी जहां सुषमा स्वराज का पुरजोर बचाव कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
ललित मोदी सुषमा स्वराज मामले में मंगलवार को कुछ और नाम जुड़ते दिखे। सबसे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली आए और उन्होंने सुषमा के पक्ष में जमकर वकालत की, क्योंकि विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। सो अरुण जेटली ने सफाई दी,
सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं, उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोनाफाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह ना रहे।
जेटली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उधर देर शाम एक टेलीविजन चैनल पर इस मामले में कुछ दस्तावेजों का हवाला देकर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर भी वसुंधरा राजे और ललित मोदी की खूब चर्चा हो रही है। ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड के मुताबिक ललित मोदी के मुंबई स्थित वकील ने सोमवार को जो दस्तावेज मीडिया में जारी किए थे उसी में से एक दस्तावेज में वसुंधरा राजे का भी जिक्र है। हालांकि इन दस्तावेजों पर वसुंधरा राजे के हस्ताक्षर नहीं है। वहीं ललित मोदी की मदद के मामले पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तीखा हमला जारी है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मंगलवार को जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पूरे केस की SIT जांच की मांग की।
I have questions to ask when there was no specific query from the authorities of United Kingdom.
मुझे एक सवाल पूछना है कि जब ब्रिटेन की सरकार की तरफ से भारतीय विदेश मंत्रालय से कोई सवाल नहीं पूछा गया था तो विदेश मंत्री ने क्यों ब्रिटेन से संपर्क किया और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ कई इल्जाम लगे हैं।
भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं जिनकी सुनवाई के लिए ललित मोदी ब्रिटेन से भारत नहीं लौटे हैं। भारत ने उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर रखा है।
आज के अखबारों में इस खबर को किस तरह से छापा गया है और तमाम दूसरी क्या खबरें छपी हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रुख कर रहे हैं बिहार का, जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जिसे लेकर पार्टी चुनाव में उतरेगी। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करने वाली ये घोषणा अभी से क्यों करनी पड़ी। इस बारे में समीर आत्मज मिश्र ने पटना में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर से बात की।
असल में बिहार में बीजेपी की जो स्थिति है उसमें यही करना बीजेपी के लिए फायदेमंद भी होगा, ऐसा बीजेपी हाईकमान मानता भी है, और इसी दृष्टि से वो चाहते हैं कि यहाँ किसी को घोषित न किया जाए। और जैसे अन्य राज्यों में झारखंड और हरियाणा में चुनाव उन लोगों ने लड़ा बिना किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए, उसी तरह से शायद यहाँ भी करना चाहेंगे, यही लगता है।
और दिल्ली से जो उन्हें एक अनुभव मिला है वो भी एक वजह रही होगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो बहुत बड़ी वजह है, और उससे दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक के पी रहे हैं लोग।
लेकिन उसके बाद ही सुशील मोदी जी जो कि बिहार के काफी बिहार भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका ये बयान आया कि अनंत कुमार जी के कहने का ये मतलब नहीं था कि किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा और नरेंद्र मोदी के ही नाम पे, मतलब एक तरह से उन्होंने सफाई दी। तो इसको क्या कहा जाए कि हाईकमान का ये फैसला वहाँ के स्थानीय नेताओं को बहुत रुचिकर नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा,
ऐसा लगता है। लेकिन सुशील मोदी के कहने का भी आधार है, इसलिए कि वर्षों से वो नेता विरोधी दल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो स्वाभाविक हक उनका बनता है कि आगे जब चुनाव हो मुख्यमंत्री बनने का बीजेपी को मौका मिले तो उनको अवसर मिले, ये उनका उनका तर्क सही लगता है। लेकिन किसी रणनीति के तहत शायद फिलहाल घोषित करना बीजेपी हाईकमान नहीं चाहे, हो सकता है चुनाव के बाद मोदी सुशील मोदी ही बन जाए, लेकिन अभी घोषित करने में शायद बीजेपी को नुकसान हो सकता।
तो क्या बीजेपी को किसी तरह का ये डर दिख रहा है कि उसके पार्टी के अंदर अगर किसी को घोषित करते हैं तो एक तरह से गुटबाजी होगी और ये गुटबाजी चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है, भीतरघात कर सकती है?
हाँ, सबसे बड़ा डर यही है, इसलिए कि बिहार बीजेपी में समान श्रेणी के कई नेता हैं और सुशील मोदी से काफी सीनियर लोग भी रहे हैं, तो उन लोगों को भी संतुष्ट रखना जरूरी है बीजेपी के लिए, और एक भरोसा दिलाए रखना कि भाई देखिए चुनाव के बाद जो करना होगा करेंगे, अभी तो किसी को घोषित ना किया जाए।
लेकिन एक चीज ये है कि अभी चुनाव काफी दिन है और एक अचानक इस तरह की घोषणा करना, इस तरह की बात करना, क्या इसके संकेत कुछ दिख रहे थे क्या पार्टी के भीतर से कि लोग अपनी दावेदारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेश करने की कोशिश कर रहे हों?
यही लगता है, आधा दर्जन लोग होंगे जो चाहते हैं कि उनको ही ये मौका मिले, इसलिए कि इस राज्य में या दूसरे राज्यों में भी इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बनने लगे हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है, तो फिर यहाँ कुछ योग्यता वाले लोग हैं वो अपना हक क्यों नहीं मांगे।
तो अभी क्या स्थिति है नरेंद्र मोदी की, अगर इमेज की बात की जाए, तमाम सर्वे आ रहे हैं और उन सर्वे में ये कहा जा रहा है कि एक साल पहले जो इमेज थी उसमें काफी कुछ गिरावट आई है, तो क्या अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की ही इमेज उनके लिए चुनाव में सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगी?
जो भी बीजेपी में इमेज है वह नरेंद्र मोदी की ही है, नीतीश कुमार के मुकाबले खड़ा करने के लिए भाजपा के पास बिहार में कोई नेता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का पिछले 10 साल का अपना काम है और उनकी उपलब्धियां हैं, ऐसा मौका बीजेपी के किसी नेता को मिला नहीं है जो भी कारण हो, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी की मदद की जरूरत है उन्हें। आपस में इतना मतभेद है बीजेपी के राज्य नेताओं में कि किसी एक को पेश करने पर अन्य लोग
आसपास जो कर सकते हैं।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मतभेद हैं, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर। और इसके साथ ही वक्त हो चला है ये जानने का कि दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। प्रगति सक्सेना तमाम अखबार लेकर स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी संदीप जी, आज मैं आपको बता दूं कि सारे अखबारों में जो प्रमुखता से छपा है, जो तीन चार खबरें हैं जो सभी अखबारों ने लगभग ली हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर तो वसुंधरा राजे जो फंस गई हैं ललित मोदी को मदद करने के मामले में, उसमें एक नया मोड़ ये आया है कि ललित मोदी से एक भारतीय चैनल ने इंटरव्यू लिया है। वो विदेश में कहीं छुट्टियाँ मना रहे हैं, वहाँ से उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने न सिर्फ वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज को कहा है कि उन्होंने मदद की है क्योंकि पारिवारिक ताल्लुकात थे उनके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने और यूपीए सरकार में नेता रहे प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ने भी उनकी मदद की है। तो ये एक नया मोड़ आया है इस खबर में। दूसरी खबर जो और सभी अखबारों ने लगभग ली है वो है फर्जी दस्तावेज पर जो लोग दाखिला दिलाते थे स्कूलों में, वो उनमें चार लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वो लोग एक एडमिशन के 5 लाख रुपए वसूल करते थे।
ये दिल्ली की खबर है।
दूसरी खबर है AIPMT में एक नया खुलासा हुआ है, जो प्री मेडिकल टेस्ट होते थे उसमें, उसका जो टेस्ट अभी रद्द कर दिया गया था उसमें एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है कि भोपाल के छात्र को रोहतक की पुलिस ने पकड़ा है। तो ये दो खबरें हैं। फिर पाकिस्तान ने बोला है कि हमारे हथियार सजावट के लिए नहीं हैं।
तो बहुत 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 शुक्रिया प्रगति जी। और अब प्रगति सक्सेना से ही सुन लेते हैं आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लागार आज ब्रसेल्स में यूरोजोन के विदेश मंत्रियों को संबोधित करेंगी। लग्जमबर्ग में उनकी यूरोजोन के विदेश मंत्रियों के साथ ग्रीस के कर्ज संकट पर महत्वपूर्ण बातचीत भी होने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स पर एक विवरण पेश करेगा। इस बीमारी से दक्षिण कोरिया में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जिनेवा में यमन और ईरान समर्थित विद्रोहियों के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में शुरू हुई शांति वार्ता तीसरे दिन भी जारी है। विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त यमन सरकार से समझौता करने से इनकार कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का आरोप है कि यमन की सरकार अपना एजेंडा उन पर थोपने की कोशिश कर रही है। इजरायली शहर सखनिन में अरब इजरायली समकालीन कला के संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। ये अपनी तरह का पहला संग्रहालय है जिसमें इसराइल और अरब कला की मिलीजुली कृतियों का प्रदर्शन होगा। श्रीलंका के गॉल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। वर्ष 2006 से पाकिस्तान ने श्रीलंका में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। अब की बार जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है।
और अब बात स्टैंड अप कॉमेडी की, जो आपने ज़रूर देखी सुनी होगी। ये एक तरह की कला है और इसमें माहिर कलाकार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये कला वाकई इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि आप इसे रोज़गार की तरह अपना सकें? बता रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी सुशांत मोहन।
डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्रिकेटर के प्रोफेशन तो अब आम हो चले हैं। नए ज़माने के साथ वक्त आया है नए प्रोफेशन का, जिसमें से एक है स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट बनना। स्टैंड अप कॉमेडी अमेरिका में लोकप्रिय हुआ एक ऐसा पेशा है जिसमें एक व्यक्ति को माइक के सामने खड़े होकर अपने सुनने वालों को हंसाना होता है। अमेरिका में तो ये कला पहले से ही बहुत लोकप्रिय है, लेकिन भारत में इस कला को लोकप्रिय बनाया शेखर सुमन, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव और कपिल शर्मा जैसे कलाकारों ने।
ओह माय गॉड, व्हाट इज अनिल कपूर, ए अर्चना मैडम बगल में होना, जल्दी जल्दी हो जा, तुम्हारा फोटो खींचो, सुबह से बोल रही थी मेरे को, कहती अनिल कपूर आए तो मेरा फोटो खींचना, आ गया, अच्छा भाई अच्छा, दोनों की मूछें साफ आ रही नजर, वाह।
ये थे कपिल शर्मा, जो अब स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं। और बीते कुछ दिनों से ये कला फायदे का सौदा बनती जा रही है और कई युवा इस कला की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
बिल्कुल सही याद दिलाया, रोज स्कूल जाके नहीं याद रहता, आपने बताया याद है, अभी आया मैं खाना छोड़ के अभी पढ़ने जाता हूँ, तब पड़ेगी तेरे दिल को ठंडक।
ये आवाज है जाकिर खान की, जिनकी गिनती भारत की चोटी के 10 हास्य कलाकारों में होती है और वो अपनी नौकरी छोड़कर अब स्टैंड अप कॉमिक में ही लग गए हैं।
यार गाड़ी की किश्त और मकान का लोन दोनों जा पा रहे हैं, ठीक है, तो कॉमेडी जो है वो इतना ज़बरदस्त पे कर रहा है। तो इसके पहले मैं एक रेडियो में मुलाजिम, रेडियो में एज ए प्रोड्यूसर मैं मुलाजिम हुआ करता था, ठीक है। पर क्या हुआ कि यार मतलब कॉमेडी साथ साथ करता था मैं, मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन जो है कॉमेडी इतना पे करने लग जाएगी कि मुझे नौकरी करने में ऐसा लगे शर्म आने लग जाए, तो पर खैर शर्म तो मुझे आई नहीं क्योंकि मैं बहुत खुश था अपनी नौकरी से, लेकिन मुझे शर्म आने लगी अपनी नौकरी करते करते क्योंकि मुझे छुट्टी लेने में शर्म आने लगी। काम माशाल्लाह से इतना चल गया, मतलब कोई तुम्हें निकाले खुद ही चले जाओ।
हालांकि फिल्मों में जाना इन नए युवा कलाकारों का सपना है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी से भी ये कलाकार बहुत कुछ कमा रहे हैं, हमें बताया हास्य कलाकार वासु प्रिमलानी ने।
जैसे कोई अगर विराट कोहली को जानता हो वैसे लोग कपिल शर्मा को भी जानते हैं। हिंदी हास्यकारों का थोड़ा वो मानना हो रहा है, वो अहमियत हो रही है उनकी जो होनी चाहिए प्रोफेशनल तौर पे। ये बहुत जल्दी हुआ है, जैसे पिछले 2-3 सालों से पहले कॉन्सेप्ट स्टैंड अप कॉमेडी का था वो अंग्रेजी स्टैंड अप कॉमेडी का था, हिंदी का इतना नहीं। और अब जब आ रहे हैं नेचुरली अभी हिंदी हास्यकारों को ज्यादा, हिंदुस्तानी ऑडियंसेस हिंदी हास्यकारों को ज्यादा समझती, ज्यादा ज्यादा प्रेरित होती हैं उनसे, ज्यादा उनका प्रेम रहता है क्योंकि ये हमारी भाषा है।
अब हास्य कलाकार बॉलीवुड में हीरो के पीछे पीछे घूमने वाले ही नहीं रहे बल्कि वो अब धीरे धीरे खुद हीरो बनते जा रहे हैं। सुशांत मोहन, BBC मुंबई।
भारत के फुटबॉल प्रेमियों को कल तब बड़ी निराशा हुई जब विश्व कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में एक अनजान देश गुआम ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत की इस हार से खेल प्रेमी तो निराश हुए ही, जाने माने फुटबॉल समीक्षक नोबी कपाड़िया भी सन्न रह गए। उनसे बात की हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने।
भारतीय फुटबॉल के विश्व कप क्वालिफायर के इतिहास में इतना खराब नतीजा नहीं मिला है क्योंकि 33 स्थान नीचे हैं हमसे। भारत 141 है तो गुआम 174, और पिछली दफा भी विश्व कप क्वालिफायर कितने भी खेले हैं तो चलो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। केवल हम 9 मैच जीते हैं कुछ 40 मैच विश्व कप क्वालिफायर में, लेकिन जो हमसे नीचे की टीमें थी जैसे 2001 मुझे याद आता है सुखविंदर सिंह राष्ट्रीय कोच थे तो ब्रुनाई से मैच हुआ था, उनकी भी रैंकिंग लगभग जैसे गुआम की है, हमसे 31 स्थान नीचे थी। हमने 5-0 से हराया, ब्रुनाई ने खेले तो 4-0 से जीते हैं। उससे पहले 96 में फिलीपींस को हराया था, तो जो कम रैंकिंग की टीम थी उनसे तो हम हमेशा जीत रहे थे। अब हैरानी की बात है कि जो ये टीम कम रैंकिंग और इतनी नीचे और केवल आबादी 1.5 लाख की, वो एक पुरानी दिल्ली में ज्यादा आबादी होगी इससे, और जिस वो इतना फुटबॉल वहाँ इतना लोकप्रिय है भी नहीं। अपना पहला मैच वो कुछ दिन पहले जीते हैं तुर्कमेनिस्तान के विरुद्ध, तो गुआम ने कुछ तो खैर उन्नति की है क्योंकि अब वो 2 मैच में 6 पॉइंट किए। लेकिन भारतीय टीम को सारे मतलब एक हर तरह का अब कोई कंप्लेंट नहीं हो सकता। 2-2 विदेशी कोच है, फॉरेन ट्रेनर है, 5-स्टार होटल में रहते हैं, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मैसी और हर तरह की सहायता मिलती है, पैसे अच्छे मिलते हैं, ISL भी खेले, आई लीग भी खेले है। स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन जो राष्ट्रीय कोच है उन्होंने करंट फॉर्म पे खिलाड़ी चुने गए हैं, तो ये तो एक बहुत दुख की बात है ये नतीजा के। हैरानी की बात है कि क्या भारत में यह फुटबॉल टैलेंट इतना गिर गया है कि अब तो हम बिल्कुल दुनिया के नीचे 20-30 देशों को के साथ भी जीतना मुश्किल पड़ रहा है।
और नोवी साहब, ये भारतीय फुटबॉल के लिए कितना बड़ा झटका है?
बहुत बड़ा झटका है क्योंकि देखो बड़े जो समर्थक थे बड़े उम्मीदें लगा रहे थे कि कुछ नहीं तो विश्व कप पहुंचना तो खैर लगभग असंभव ही था क्योंकि इस ग्रुप में ईरान भी है, वो तो हम 2 मैच जरूर हारेंगे उससे। लेकिन इस ग्रुप में 3rd स्थान पे आते तो भारत एशिया कप 2019 का उसमें क्वालिफाई कर सकते थे क्योंकि ये दफा दो एशिया कप 24 टीमों की हो गई है, 16 टीमें की नहीं। लेकिन अब तो 3rd स्थान भी मुश्किल लग रहा है। वो तो कह रहे थे फुटबॉल में क्रांति आ रही है, लेकिन असली में क्रांति तो तभी आएगी जब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में नेशनल टीम के नतीजे अच्छे होने लगे।
कार्यक्रम के समापन से पहले एक बार फिर सुनते हैं प्रमुख समाचार प्रगति सक्सेना से।
BBC समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता शुरू कर दी है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख ने ग्रीस की सरकार पर आरोप लगाया है कि वे कर संबंधी समझौते की बातचीत के मुद्दे पर आम जनता को धोखे में रख रही है। अमरीकी अरबपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे अमरीका में अगले साल होने वाले चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन दाखिल करेंगे। मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी 21st Century Fox ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी के प्रमुख रूपर्ट मर्डॉक इस महीने के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे। ब्राजील के सरकारी अभियोक्ताओं का कहना है कि सरकार को तकरीबन 2000 परिवारों को अमेजॉन जंगल से बेदखल होने से तत्काल रोकना चाहिए। BBC समाचार।
दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में इतना ही। हेमंत कुशवाहा बीबीसी स्टूडियो से खबरें आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे। घड़ी में बज रहे हैं 7, ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक संदीप सोनी को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत।